أعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أما بعد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين امام نبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا, جتنے بھی مخلوق پیدا فرمائی, انسان جنات جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مخلوق میں دو حکمت بنائی ہے. نمبر ایک, بعض مخلوق ہے جو بالکل خیر ہی خیر ہے اور بعض ہے جو شر ہی شر ہے, بیڈ ہی بیڈ, اور بعض ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. جیسے فرشتے خیر ہی خیر ہیں, شیطان شر ہی شر ہے, انسان میں نیکی بھی ہے بدی بھی ہے, شر بھی ہے خیر بھی ہے. جہاں ہر مخلوق میں آپ غور کریں گے تو یہ بات ضرور نظر آئے گی. ہم کھانا کھاتے ہیں, روٹی کو اور بوٹی کو استعمال کرتے ہیں, ہماری زندگی کا مدار جو ہے وہ ظاہری طور پر تو روٹی پر ہے, لیکن اگر یہی کھانا میرے بدن میں اوور ہو جائے, تین کے بجائے میں 15 روٹی کھا لوں, تین روٹی کے بجائے 15 روٹی کھا لوں, اگر زیادہ مقدار میں جسم میں پہنچ گیا اوور, سانس لینے بھی مشکل ہو جائے گا, تو بجائے وہ حیات کے کیا ہو جائے گا, ممات ہو جائے گا, زندگی کے مر جائے گا. ہاں, وہی غذا ہمارے لیے موت بن جائے گی. حالانکہ غذا کو اللہ پاک نے ہماری زندگی کا سامان بنایا کہ آدمی کھانا نہ کھائے 4-5-6 دن تو ویسے مر جائے گا, لیکن اگر اسی کھانے کو ہم نے اوور ڈیو کر لیا تو ظاہری بات ہے بجائے زندگی کے مردہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ تو کھا کر مرتے ہیں, بعض جاننے والے احباب تو کہا کرتے ہیں بھوک سے مرنے والے کی بجائے کھا کر مرنے والے کی تعداد زیادہ ہے. بھوک سے مرنے والے کی بجائے کھا کر مرنے والے کی تعداد زیادہ ہے. اسی طرح پانی ہے, جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. کوک پیو پھر بھی پانی پیتے ہیں, جوس پیو پھر بھی پانی پیتے ہیں. پانی کے بغیر تو زندگی گزارنا مشکل ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی کو ہر مخلوق کے لیے زندگی بنائی ہے. قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا, ہر جاندار کو بنایا ہے, اس کی زندگی کا مدار ظاہری طور پر ہے. لیکن اگر یہی پانی اگر ہم نے بجائے ایک گلاس دو گلاس کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے 15-20 لیٹر پی لیا تو مسئلہ ہی ہو جائے گا, اس کے خیر کے بجائے کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. جیسے انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, اسی طرح اس کی غذا میں بھی خیر بھی ہے شر بھی ہے. जैसे सांस लेते हैं हम, हवा जिसको कहते हैं, जिसके बगैर हम एक मिनट के लिए जी नहीं सकते। यही हवा अगर ज्यादा मिकदार में पहुंच जाए तो आदमी की सांस उखड़ने लगती है। ज्यादा अगर उसको दे दिया ऑक्सीजन तो फिर वो यही चीज नफा के बजाय नुकसान हो जाएगी। तो इंसान भी दुनिया की मखलूकात में से, मर्द और औरतें एक मखलूक है। जितनी मखलूक पैदा की है इसके अंदर भी दो पहलू है, एक खैर का है और एक शर का है। दूसरा, ये तो एक बात यहां इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इशारा किया। दूसरी बात, दूसरा कानून अल्लाह का ये है, ये जो खैर और शर है, ये खैर जो है किसी भी जात में मौजूद नहीं है। मेरे और आपके अंदर में खैर मौजूद नहीं है, ये खैर और भलाई को बाहर से मेहनत करके लाना पड़ता है। खैर को अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, इसे नहीं बन जाता। जबकि शर हर एक के अंदर में मौजूद है, ये कानून है अल्लाह का। खैर लाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शर के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। उसकी मैं मिसाल दिया करता हूं, बाग को उजाड़ना है तो छोड़ दो, उजड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन बाग को अगर बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, माली रखना पड़ेगा उसमें काम वाला। तो शर तो हर इंसान के अंदर में दाखिल है, लेकिन खैर के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन पानी है, उसका जाती वस्प क्या है, पाक करना है। जब हम पानी को इस्तेमाल करेंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। वानजलना मिने समाई मान तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी को उठाया, लेकिन इसी पानी के अंदर अगर कोई नापाक चीज मिल गई तो नापाक बन जाता है। पानी तो पाक था लेकिन उसमें नापाक चीज मिल गई तो पानी क्या हो गया, नापाक हो गया। तो पानी तो अपनी जात के एतबार से पाक है, लेकिन उसमें नजासत गिरी तो पानी क्या हो गया, नापाक हो गया। पेशाब और पाखाना नापाकी, ये हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर है कि पेशाब के बगैर नहीं चलेगा, मर जाएगा। नहीं सो अगर पाखाना जब तक मौजूद है वो क्या है, नापाक है। सात समंदर का पानी भी उस पर डाल दे तो जी नापाक है ना। लेकिन जब तक वो पाखाना पाखाना बाकी रहे, वो पेशाब पेशाब बाकी रहे, तो क्या हो जाता है, नापाक ही है, वो पाक होने वाला नहीं है। अगर जैसे मेरे कपड़े पर पेशाब लग गई तो आप पानी के जरिए उस कपड़े को क्या करेंगे, धो डालेंगे। तो पानी कपड़े से लग करके उस पेशाब को जो कपड़े पर लगी हुई थी उसको दूर कर देता है, तो कपड़ा नापाक बना था पेशाब की वजह से, अब क्या हो गया, पानी की वजह से पाक हो गया। मैं तुमको एक मिसाल देता हूं, तो नापाकी का हुक्म अब क्या हो गया, खत्म। लेकिन आपने पानी डाला फिर भी वो पाखाना उस पर मौजूद है तो क्या पाक हुआ, पहले तो उस नापाकी को दूर करना पड़ेगा, फिर उसको बराबर धोना पड़ेगा। तो यह चीज है इंसान के अंदर में, यह चीजें रखी हुई है, वो क्या है, शर। जब तक शर उसके अंदर मौजूद है वो किसी न किसी को सताएगा, लेकिन अगर उसी इंसान मर्द और औरत में खैर आ गई तो अब हर एक की भलाई चाहेगा। हर एक की क्या है जी, जैसे एक मकान है, मकान की खूबी है कि वो उम्दा किस्म का है, उसका प्लास्टर माशाल्लाह बहुत बेहतर है, रंग रोगन रोगन सब है उसके अंदर भी, माशाल्लाह ब्यूटीफुल फर्नीचर है। अब अच्छा मकान तैयार करने के लिए उसका आप क्या बनाएंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, नक्शा बनाएंगे, किसी आर्किटेक्ट को तैयार कराएगा, वो इस तरीके से इंजीनियर आएगा, मटेरियल लाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, फिर उसके पेंटर को बुलाएंगे, सब कुछ। इतनी सारी मेहनत के बाद वो मकान बना है, लेकिन अगर आप ये मेहनत न करो तो मकान बनेगा? ये तो दुनिया की चीज के लिए। इंसान को अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जी कुरान पढ़ते हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरा दिल बन जाए। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, इन दुनिया खुलिकत लकुम वअंतुम खुलिकतुम लिलआखिरा। सारी दुनिया जमीन से लेकर आसमान, मशरिक से लेकर मगरिब, शिमाल से लेकर नॉर्थ टू द साउथ, ईच एंड एवरी थिंग्स आर क्रिएटेड फॉर यू। चांद, सूरज, सितारे, नदी, नाले, सब तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुमको अल्लाह ने अल्लाह के लिए पैदा किया है। मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह पाक ने मेहनत करके कह दिया कुन फयकून, चांद हो गया, हो गया, सितारा हो गया, हो गया, सूरज हो गया, पहाड़ हो गए, समंदर हो गया, ये सब तुम्हारे लिए। अब तुम्हें मेहनत करनी है किसके लिए? आखिरत के लिए। ये चीज इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कैयसु मन दान नफ्सा। हाँ मेरी माए और बहने, सबसे ज्यादा क्लेवर मैन एंड वुमन कौन है? हम क्या कहते हैं, प्रोफेसर, ओ बड़ा टीचर, ओ इंजीनियर, ओ बड़े से बड़े डिग्री वाला, ये क्लेवर है मेरी और आपकी निगाह में। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, अल कईसो, कईस के माना इंटेलिजेंट, क्लेवर, इंटेलिजेंट ऊपर का दर्जा, क्लेवर, समझ में आई बात, क्लेवर इंटेलिजेंट कौन है? मन दान नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, जो दुनिया को भूले और आखिरत की फिक्र करे, तैयारी करे, तैयारी मेहनत करे, खैर करे, खैर का काम करे। इंसान का बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है ना, तो इंसान में कोई खूबी, वो बच्चे में कोई खूबी नहीं है। उस बच्चे को आलिम बनाने के वास्ते क्या जरूरत पड़ती है? मेहनत। आपने देखा कि किसी मां के पेट से मौलवी साहब पैदा हुए, कभी हो गया कोई, हो गया बोली जिंदगी में तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन कानून क्या है? अगर वैसे मां के पेट से ही हाफिज साहब पैदा हो जाए मौलवी साहब, तो फिर मदरसे खोलने की जरूरत नहीं है। सारे माशाल्लाह हाफिज साहब पैदा हो रहे हैं, बड़ा होने का इंतजार है, फिर मस्जिद में लगा दो उसको तरावी के लिए। अगर ऐसा ही है तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके अंदर कैपेबिलिटी, सलाहियत, ताकत रखी है कि वो इल्म हासिल करके आलिम या दुनिया का डिग्री या दुनिया का मास्टर्स बन सकता है। तो अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, मेरी माए और बहने, अल्लाह ने क्या कहा, आप तो बच्चा जन्ने वाली, आप लोग जानते, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्मातिकुम, हमने तुमको पैदा किया तुम्हारी मां के पेटों से, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्मातिकुम ला तअलमून शैआ, तुम्हें एक चीज का भी इल्म नहीं था। देखा अल्लाह क्या कहा, ला तअलमून शैआ, नबियों को भी नहीं, साहबा को भी नहीं, अवलिया को भी नहीं, मुझे और आप किसी को नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में भी कहा, नबी को पे मां के पेट से नबी बनकर आया, वो तो प्रोफेसर अल्लाह देता है, अल्लाह उनको नबी बनाता है। ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, फिर हमने तुमको कान दिए, आंखें दी, दिल दिया, तो क्या कान के बगैर बच्चा पैदा होता है? बाद में कान आ गए, पैदा होने के बाद कान देगे किसी के? कान तो मां के पेट से पैदा हो, बच्चे का कान होते ही है। बच्चा जब पैदा होता है तो वल अबसार, आंखें होती है, उसका दिल होता ही है। अगर दिल ही ना बने तो बच्चा पैदा ही नहीं होता। पहले तो दिल बनता है ना मां के पेट में। बहुत सारी औरतें कहती है कि बच्चे, हमारे तो टेस्ट किया डॉक्टर ने, तो अभी बच्चे का दिल ही नहीं बना। दिल धड़कन करता है पहले, बाद में बच्चा बनता है। इसलिए तो कहा दिल जो है ना, हर चीज का दिल होता है ना, दिल होता है। कुरान का दिल क्या है? सूरह यासीन है। और सूरह यासीन का दिल क्या है? सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, वो आयत है कुरान का दिल। इंसान का भी दिल है और उसका दिल अल्लाह का जिक्र है। दुनिया का दिल है, दुनिया का दिल क्या है? इंसान है और इंसान की जबान जिक्रुल्लाह है। ये जिक्रुल्लाह जब तक बाकी रहेगा दुनिया कायम रहेगी, जिक्रुल्लाह खत्म कयामत आ जाएगी। ला तकूम अस्सा हत्ता युकालु फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, कयामत कायम नहीं होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। अगर एक भी आदमी अभी बाकी है जिसकी जबान पर अल्लाह है, कयामत नहीं आएगी। जिस दिन अल्लाह कहने वाले खत्म हो गए, कयामत आ गई। तो ये अल्लाह क्या कह रहे हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसके कान भी होते हैं, आंखें भी होती, दिल भी होता है। क्या कहते हैं अल्लाह पाक, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, आई हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम योर मदर्स वूम ला तअलमून शैया, तुम्हारे पास एक जर्रा बराबर नॉलेज नहीं था, जाहिल 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 पैदा हुआ। फिर अल्लाह क्या कह रहे हैं, वजअल लकुमुस समअ वल्लबसारा, फिर समा का माना है मैंने तुम्हें कान के अंदर में सुनने की ताकत दे दी। कान तो है लेकिन सुनने की ताकत जो है अल्लाह देता है बाद में पैदा होने के बाद। आंखों में देखने की, बच्चा जो है ना वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी निगाह बढ़ती है, वरना छोटा बच्चा भी पैदा हुआ तो दूर तक नहीं देख सकता है, वो पहचानता भी नहीं सकता, वहां खोलता है सिर आंख बंद आंख खोल, सोया जागा सोया जागा, उसको नहीं पता है क्या है। लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जाते हैं तुम्हारी ताकत के मुताबिक अल्लाह सुनवाई भी देता है, आंखों की बिनाई भी देता है और दिल की ताकत भी देता है। 55 साल के इंसान का दिल अगर बच्चे में पैदा हो जाए तो मर जाएगा। इसलिए बच्चे में कितनी ताकत होती, जितनी उसकी उम्र है, उसकी जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सुनवाई बढ़ती है, उसकी बिनाई भी बढ़ती है और उसकी ताकत भी बढ़ती है। अल्लाह खुद कह रहा है कि जो तुम मां के पेट से पैदा हुए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब बाद में तुम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होते हैं तो तुम इल्म हासिल करते हैं। अब इंसान को जाहिल बनाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत है? वो तो पैदा ही जाहिल हुआ है, ही इज बोर्न इग्नोरेंट। बच्चा जब मां के पेट से पैदा हुआ तो वो कोई आलिम पैदा हुआ नहीं हुआ। अब उसको आलिम बनाने के लिए, डिग्री के लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज का। आपने कहीं देखा कि कहीं दुनिया में कोई यूनिवर्सिटीज है या कोई मदरसा या कोई कॉलेज है स्कूल जहां जाहिल बनाते हैं? Did you see anywhere? But this school will make you ignorant. कभी देखा कोई कॉलेज है उसमें जाओ भाई यार जाहिल बनना हो तो आओ? कहीं नहीं, वो जाहिल तो है ही, जाहिल तो है ही। इसलिए एक चीज तो क्या है, इंसान तो बिल्कुल जाहिल है, दूसरी उसकी खूबी अमल क्या है, अखलाक है, अमाल से आरास्ता होता है जी। तो जैसे अपने आप को बनाने के लिए नेक लोगों के पास जाता है, मदरसों में जाता है और उस मौल साहब को वेजेस भी दिया जाता है कि इसको कुछ बनाओ, ये जाहिल है इसको कुछ बनाओ, वो बच्चा जाहिल आता है वो आपके पास आकर इलम सीखता है। और यहां तक के यहां गवर्नमेंट का भी हुक्म हो गया कि तालीम और तरबियत जरूरी है, नहीं तो फिर अंडर 18 इयर्स बच्चे को ले जाएंगे, वो फ्री खाना भी देते हैं, पढ़ाओ इसको जाहिल है इसको पढ़ाओ, और उसकी तनख्वाह भी देते हैं, पेजेस भी स्कूल वालों को मिलता है। ये सारे जाहिल पैदा हुए हैं, सबको मौलवी बनाओ, सबको टीचर बनाओ, सबको लॉयर बनाओ, सबको ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, लेकिन कहीं जाहिलों की स्कूल नहीं है, बनने के लिए स्कूल है। तो अगर इंसान बद अखलाक बनना चाहे तो अखलाक बनाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मां के पेट से ही पैदा हुआ और उसके अंदर में शर है, जहालत भी है और शर भी है। मैंने कहा ना जहालत भी है और मैंने कहा बाप को बनाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर से आदमी को लाकर उसको बनाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा और उसके अंदर माली को रखना पड़ेगा ताकि उसकी, लेकिन अगर उस बाप को उजारना है तो मेहनत की जरूरत छोड़ दो ऐसे। तो इंसान तो पैदा ही जाहिल हुआ है और उसके अंदर में जाति जो वस्प और क्वालिटी है वो शर है, बैड थिंग्स। लेकिन उसको अगर अच्छा बनना हो तो बाहर से मेहनत करके उसको भलाई लानी पड़ेगी। जैसे आप लोग मेहनत से आए, दर्श में आ गए, अभी ये मेहनत है, मस्जिद में गए नमाज के लिए मेहनत है, कुरान की तिलावत की मेहनत है, लोगों को जमा किया मेहनत है, लोगों के दिल में अल्लाह रसूल की बात पहुंचाई मेहनत है, मैंने चैरिटी दी मेहनत है, मैंने मदरसा बनाया मेहनत है, हम मेहनत कर रहे हैं खैर का काम ताकि अल्लाह की निगाह में अच्छे बन जाए, है तो शर वाले। तो फरिश्ते तो खैर ही खैर है, उसमें कोई शर नहीं है, और शैतान में तो शर ही शर है, उसमें कोई खैर नहीं। इंसान में शर और खैर है, लेकिन शर उसका जाती वस्वा है, उसमें है ही, उसको करने की, उसको वैसे ही छोड़ दो जैसे बाप को छोड़ दिया, अगर पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं कुछ नहीं किया तो वैसे ही लोगों को मारेगा, गालियां देगा, बकवास करेगा और न मालूम क्या क्या डंडे करेगा, नहीं देखे लोग दुनिया में ऐसे भी जाहिल है, सुबह से लेकर शाम तक हजारों को कतल करते, हजारों के माल लूटते हैं, क्या और क्या करते हैं, जाहिल लोग। लेकिन अगर कुछ बनना है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जब ये मेहनत होगी तो मेरी बात सुन रही है ना, तो ही इंसान बनेगा। ये है तरबियत इंसानी। एक मिसाल समझाया करता हूं मैं आमतौर पर आपको, माशाल्लाह आइसक्रीम बनानी है, खानी नहीं बनानी है, आइसक्रीम तैयार करनी है तो उसका मटेरियल पहले लाना पड़ेगा ना, दूध लाना पड़ेगा, उसको एक मखसूस डब्बे में रखना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा और क्या ये उसकी जो शेड्यूल इस तरह करके जब जाकर वो आइसक्रीम तैयार होती है और उसको जब तैयार हो जाएगी तो उसको बाहर निकाल कर रख देंगे तो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, है ना। उसको बाकी रखने के लिए क्या रखनी पड़ेगी, ठंडक में रखनी पड़ेगी, उसके लिए ठंडक की जरूरत है। इंसान को बनाने के लिए भी मेहनत और माहौल की जरूरत है, नहीं समझे मेरी बात। अगर तुमने डिग्री हासिल कर भी ली लेकिन माहौल में नहीं बैठे, भाई हमारे माशाल्लाह इन लोगों ने मस्जिद राशिदीन कुलबा राशिदीन वालों ने तो प्रोग्राम रखा है ना, सत्र देखो ना प्रोग्राम रखा है, तो ये क्यों है, मेहनत करवानी, वो ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा, ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा तब जाकर काम होगा, वरना उसको बाहर की हवा लगेगी तो ये मेल्ट हो जाएगी आइसक्रीम की तरह। समझ में आई बात, हाँ ये कितनी आइसक्रीम है, कितनी हवाएं घूम रही दुनिया में, वो उसके उसकी हवा लगेगी ना मार्केट में और स्ट्रीटों में तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। औलाद की तरबियत इसी तरह करनी पड़ेगी भाई, उसको पहले अच्छे अच्छे तरबियत सिखा करके माहौल में रखना पड़ेगा भाई। अगरचे ही डोंट अंडरस्टैंड स्टिल मेक हिम सिट इन द माहौल ऑफ सम अल्लाह वाला। तो वो कहते हैं ना, एक तो होता है रोशनी और एक होता है आपकी गर्मी, दो चीज है ना, आपके पास बैठेंगे तो रोशनी, आप बैठ गए हीटर के पास, ऐसा हीटर जिसमें जल रहा हो तो उसको जला दिया तो एक तो रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी वहां पर, और एक उसकी गर्मी भी मिलेगी। किसी अल्लाह वाले के पास बैठेंगे, इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और फारसी और अरबी, बट एटलीस्ट यू गेट ए हीट बाय अल्लाह वाला। मेरी बात नहीं समझ रहे, लेकिन अगर वो समझता है लैंग्वेज तो उसको रोशनी भी मिलेगी और उसको हीट भी मिलेगी, दोनों चीज। ये मिसाल दिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने कि अल्लाह वालों की मजलिस में जाया करो, दर्स में बैठा करो, बयान प्रोग्राम में बैठा करो,
نیک اور صالحین کی مجلس میں بیٹھا کرو تو انشاءاللہ وہ دل کے اوپر جو ڈسٹ لگا ہے نا وہ ہٹ جائے گا اور اللہ والوں کی اور اللہ کی رسول کی باتوں سے اس کے اندر میں نور پیدا ہو جائے گا, روشنی آئے گی, گرمی لگے گی اور دل میں ایمان تازہ ہوگا. یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ نے سنا ہے خلافت عباسیہ بنو عباس. اب اس میں سب سے پہلا جو خلیفہ جو بنا تھا اس کا نام تھا ابو العباس صفاح, اس کا نام تھا ابو العباس صفاح. اس کا لقب صفاح کے معنی ہے بہت بڑا ظالم, ہزاروں لاکھوں کو قتل کرنے والا, جیسے یہ آج ہمارا ہے فلسطین کے بچوں کو. بنو امیہ کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ آدمی تھا, اس نے بنو امیہ مسلمانوں کو شہید کر دیا, تھا مسلمان, ظلم بہت کیا اسے. اس کے بعد خلفہ ابو جعفر منصور ہے. جب بنو امیہ کے ہاتھ سے سلطنت آئی تو بنو عباس کے جتنے بھی لیڈران تھے بڑے بڑے ان کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, تو سلطنت کو لینے کے لیے بڑی محنت کی اور انہوں نے کوشش کی کہ بنو امیہ کا ایک بھی آدمی بچنے نہ پائے, سب کو قتل کر دو, ایک بھی نہیں, تاکہ ان کے پاس حکومت چلی جائے. بس یہ چیز انہوں نے کی ہے. اس پر انہوں نے ہزاروں لاکھوں کو قتل کر دیا دنیا کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان جاہل ہوتا ہے دنیا کے اندر میں تو وہ نہیں دیکھتا ہے سامنے کون ہے, بھائی ہو یا چچا ہو, کوئی بھی ہو. ہزاروں واقعات ہیں, باپ کو بھی ختم کر دیا پچھلے بادشاہوں نے, اپنے باپ کو بھی ختم کر دیا, زہر پلا دیا حکومت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے دو, کہا جا کر دیکھو انہوں نے میرا کھٹ پھاڑ دیا ہے, بیٹے نے ہی باپ کو مار دیا ہے. جا کر دیکھا تو باپ بھی بڑا چالاک تھا کہ میرا بیٹا حکومت کے لیے مجھے مارے گا, تو اس نے کچھ دوائیں رکھی تھی باپ نے, میاں بیوی کی جو دوا, اس میں زہر ڈال دیا, یعنی کوئی زہر کی گولی بنا دی. اب یہ تو مر گیا, اب اس نے دیکھا کہ میرے باپ کی یہ ساری بیویاں ہیں, اس نے وہ گولی کھائی تو وہ بھی مر گیا, وہ تو پوائزن تھی. بیٹے نے باپ کو مار دیا, باپ نے بیٹے کو مار دیا حکومت کے لیے. عبد الرحمن نے اس وقت اسپین کے اندر میں بنو امیہ کی حکومت قائم کی تھی اور اندلس میں, تو یہ تو وہاں تک پہنچ گئے تھے, وہ لوگ بچ گئے. لیکن بغداد میں دمشق میں سب کو ختم کر دیا, سب کو ختم کر, ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا, سب مرد کو ختم کر, اور بہت سو کو جیل میں ڈال دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ اولاد کی صحیح تربیت کا موقع نہ ملے تو ایسا ہوتا ہے, بڑے ہو کر ظلم کرتے ہیں, بڑے ہو کر ظلم کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ہماری اولاد موجود ہے, مجھے خاص بات جو بتانی ہے, ہمارے پاس ہماری اولاد موجود ہے, لیکن باپ ایسے وقت میں کام پر جاتا ہے جب بچے سوئے ہیں. کیا ہے وہ تو 8 بجے اٹھیں گے نا اسکول جانے کے لیے, 7 بجے, 8:30 اور بیچارہ 6 بجے سے 6:30 بجے سے کام پر نکل گیا, شام کو گھر ایسے وقت میں لوٹتا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا, ایسے جنرل بات کر رہا ہوں, ایسا ہے, ایسا بہت سے میرے کام پر ایسی باتیں آئی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہی نہیں, جب صبح جاتا ہوں سوئے ہیں, شام کو آتا ہوں تو سو جاتے ہیں صبح اسکول کے لیے جلدی. ایسے اب دن بھر بچے کہاں تھے, انہوں نے کیا کیا, کس کی صحبت میں رہے, ان کی تربیت کیسی ہوئی, باپ کو کچھ معلوم نہیں ہے, کچھ بھی معلوم نہیں, ہمیں فکر نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں یہ مکتب کے جتنے استاد ہیں نا مکتب کے, ان کی تو تنخواہ دارالعلوم کے استاد سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں تم بتاؤ ریزن؟ یہ مفتی احمد صاحب ہمارے خانپوری نام پر کر بن گیا اس لیے کہ یہ ماں باپ کو تو کچھ پتا نہیں, تمہارے بچوں کے ایمان بچانے والے یہ لوگ ہیں,
बचपन से, ये तो मेन चीज है ना। प्लांट जो होता है ना, छोटा प्लांट वो असल है, बड़ा हो जाए तो ट्री बन गया है, तो वो तो सुधरने वाला नहीं है। तो बचपन से प्लांट को बनाने वाला अगर कोई है तो मकतब का उस्ताद है, चार पांच छह साल तक उसके पास, इसके पास, इसके पास, तो उसकी तो कदर ज्यादा होनी चाहिए थी। बाप को तो पता भी नहीं है, सुबह आया शाम आया, मां क्या करेगी, खाना बनाएगी घर में और क्या करेगी, कपड़े आयन कर देगी, भेजेगी मदरसा। लेकिन असल जो है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल कुरान। इसीलिए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में चार साल रहे, माल्टा में चार साल, और माल्टा में इन्होंने तर्जुमे कुरान लिखा, कोई किताब नहीं, अपने दिमाग से लिखा कुरान का तर्जुमा। सबसे पहले तर्जुमे शेखुल हिंद मौजूद है आज भी, आप देख लीजिए, माल्टा की जेल में लिखा, और वहां जेलरों को पढ़ाते थे, लेकिन कुछ अय्याम अपना खास होता था जिनमें कुरान लिखते थे आयत बाय आयत, चार साल मिलकर। जब इनको छोड़ा गया, हिंदुस्तान गए, तो उलमा को जमा किया हिंदुस्तान के, कहा मैं दो लेसन लेकर आया हूं जेल से, टू लेसन। पहला लेसन यह है कि जगह जगह मकतब कायम किया जाए, मकतब दारुलूम नहीं, मकतब, और उसमें उस्ताद रखे जाए, अच्छे डीसन उस्ताद हो, इससे तुम्हारे बच्चों का ईमान बचेगा। बचपन में जो दिल में बैठ गया आप लोगों के, है कि नहीं अभी तक, आप लोग तो दारुलूम में नहीं गए, आप तो आलिम मुफ्ती तो नहीं बने, लेकिन आप लोगों के और हमारे दिल में जो कलमा उस वक्त पढ़ाया था, अत्तहियात सिखाई थी, दुरूद इब्राहिम सिखाया था, जो बातें हमें सिखाई थी उस्ताद ने बचपन में जरा मारते मारते, आज तक हमें याद है, और वही नमाज हम पढ़ते हैं, थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है बाद में उम्र के होने के बाद, वो बचपना था हमारा, लेकिन वो दिल में जो ईमान घुसा है, वो नाजरा कुरान जो घुसा है, जिन्होंने बचपन में नाजरा कुरान नहीं पढ़ा है आज बेचारे स्ट्रगल हो रहे हैं कि हमें नाजरा कुरान नहीं आता, और जिन्होंने उस्तादों के पास पढ़ लिया, उन उस्तादों का दर्जा कितना बड़ा है, पूरी जिंदगी नाजरा कुरान तुम पढ़ोगे उसको सवाब मिलेगा। इसीलिए मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते, काश के मैं अहसनुल कवायद पढ़ाता, बुखारी शरीफ नहीं, अहसनुल कवायद पढ़ाता, क्यों, इसलिए कि अहसनुल कवायद के लिए सारे बच्चे आते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए सारे बच्चे नहीं आते, वो 50 और 100 में 200 में से 5-10 होते हैं, मेरी बात समझते हैं। तो हजरत ने फरमाया सबसे पहले मकतब, और मकतब के उस्ताद के साथ मोहब्बत प्यार हो, और उनकी तनख्वाह 10-15-20 पाउंड ज्यादा हो, ताकि वो हमारे बच्चों का ईमान बचाते हैं। और हमने अगर ट्रस्टियों ने कोशिश की है कि उस्तादों की तनख्वाह बढ़ाई है, तो वो कम्युनिटी के जितने बच्चे ईमान पर बाकी रहेंगे उन ट्रस्टियों को भी सवाब मिलेगा। आज लोग मकतबों में क्यों नहीं पढ़ाते, वो क्यों काम करते हैं सुबह से शाम, आलिम है लेकिन वो काम पर मजबूर है, इसलिए कि उनकी मकतब की तनख्वाह उनके लिए सफिशियंट नहीं है, मेरी बात नहीं समझते, सफिशियंट नहीं है। इसलिए हमारे में अभी जब हिंदुस्तान गया ना फरवरी में, तो कोसंबा में वहां उलमा का प्रोग्राम रखा गया, उसमें मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दमर बरकातुम ने क्या बयान किया कि चलो भाई आवाम तो मदद नहीं करते हैं, मकतब के उस्तादों की तनख्वाह को नहीं बढ़ाते हैं, तो हम सब बड़े बड़े उलमा मिलकर एक कमेटी बनाएं और लोगों से कहें भाई तुम इसमें जमा कराओ, इसमें क्या है जमा करा, यहां तो खबर नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो किसी बेचारे मौल साहब पढ़ाते हैं, उसकी बीवी को डिलीवरी आ गई, वहां 30-40 हजार रुपया है उसके, कहां से लाएंगे, अचानक बच्चा बीमार हो गया, कहां से लाएंगे, वो बेचारे जकात मांगते हैं, अब वो उस्ताद है, मेरे बच्चों के आपके बच्चों के उस्ताद है, लेकिन उसके पास अपने बीवी के बच्चे की डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल के पैसे नहीं है, तो ये सब बेचारे कमेटी बनाते हैं उलमा, और उनमें से ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, ये लोगों को ही पैसे हैं, लेकिन किसी उस्ताद का काम। अब ये जो हजरत ने फरमाया मकतब और मकतब के उसातिज़ा अच्छी हो, ये काम करें। नंबर दो, हर मस्जिद में तफसीर कुरान, हजरत ने कहा क्या हो भाई तफसीर कुरान, तो छोटे बच्चों का मकतब और बड़े लोगों के लिए तफसीर कुरान, ताकि ईमान महफूज रहे, सलामत रहे, और बड़े लोगों का ईमान क्या है फ्रेश हो जाए कुरान सुनकर, मेरी बात नहीं समझे। इसलिए सुबह जाते हैं तो बच्चे सोए हैं, शाम आते हैं तो बच्चे सोए हैं, क्या होगा उन बच्चों का,
फिर चाहते हैं मेरा बच्चा ये करे ये कर। बाप की तरबियत हुई नहीं। अंदाजा लगाए हमने अपने आप को कितना बर्बाद किया, जो बच्चों को बनाने के वास्ते, इंसानों को बनाने के वास्ते, मुसलमान बनाने के वास्ते क्या जरूरत पड़ती है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। हाँ, और इस्लामी अखलाक तब आएंगे, माँ बाप के रिस्पेक्ट बच्चे तब करेंगे जब उसमें अखलाक होगा, नहीं तो गालियां देगा। मेरे सामने कल बाप बेटे ने बाप को गाली दी, मैंने कहा पागल है तू क्या, अभी तेरी मां का इंतकाल हुआ, एक महीना नहीं हुआ और तू तेरे बाप के साथ रह जा, क्यों? जाहिल लोग, उन्हें पता ही नहीं है बाप क्या है। बाप एक आंख से माजूर भी है, क्या फायदा। अल्लाह मानव शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अहादीस का खुलासा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। सिर्फ दुआ में आप पूरे 23 साल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में आप सोचेंगे, पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में तरबियत, औलाद की तरबियत के बारे में कितनी दुआएं की आपने, कितनी दुआएं की। देखिए रमजान का महीना है, चला गया अभी, उसको हासिल करने के लिए एक मोमिन कितना एहतमाम करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो महीने पहले दुआ करते थे, रमजान का महीना मिल जाए, रमजान का महीना मिल जाए, रमजान का महीना मिल जाए, दो दो महीने पहले, क्योंकि बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है भाई। अभी तो 5 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, और इबादत, और इबादत। ये चीज इसी तरह इंसान को ये दुआ क्यों सिखलाई माह रजब में, इसलिए सिखाई कि हर मुसलमान को रमजान की तरफ मुतवज्जे करे, वरना मेरे नबी को तो जरूरत नहीं थी ना। मुसलमान में 2 महीने पहले मैं नबी दुआ करता हूं रमजान के लिए, तुम मुतवज्जे हो जाओ। देखो विंटर आ रहा है, हम पहले से बंदोबस्त करते हैं, विंटर आ रहा है बस, सर्दी आ रही, चलो कोट ले लो, ये ले लो, वो खरीद लो, माल का आदर, फुला फुला सारी चीजें। इसी तरह रमजान के लिए भी दुआ सिखलाई, इसी तरह किसी बस्ती में आप जाते हैं तो अल्लाह के नबी ने क्या दुआ सिखाई पता है, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिया, अल्लाह ये मैं बोल्टन चला गया, आप जब दाखिल हुए ना तो ये दुआ पढ़, अल्लाह के नबी पढ़ते हैं ये दुआ कहां पर लिखी है, इब्ने माजा शरीफ में, तबरानी में भी है, दुआ उल तबरानी है, क्या दुआ, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिया, अल्लाह मैं आ गया ये बाटली शरीफ में, ड्यूजबरी शरीफ में, बोल्टन शरीफ में, ए अल्लाह यहां के लोगों में मेरी मोहब्बत डाल दे, क्या दुआ सिख अल्लाह के नबी ने, देखो अल्लाह हब्बिबना इला अहलिहा, अल्लाह मुझे महबूब बना ले, कोई मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, सारे मुझे मोहब्बत की निगाह से देखे, कोई मेरा दुश्मन ना हो यहां, क्या दुआ है। और फिर क्या कहा, वह हब्बिब साली अहलिया इलेना, यहां के लोगों के नेक लोगों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, हब्बिब साली अहली लेना, क्या दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक दुआ को तो पढ़ो, तुम बस्ती में जाओ उसमें क्या दुआ करनी है, लेकिन आप देखेंगे। मैंने कहा भाई कल एक तालिब इल्म को कहा, तू गया काबतुल्ला, तूने ये दुआ पढ़ी थी जब दाखिल हुआ मक्का में, कहा नहीं पढ़ी, मैंने कहा अगर तू दुआ पढ़ता ये तो वहां के पुलिस भी तेरे रिस्पेक्ट करते, वहां के फरिश्ते भी तेरा एहतमाम करते, इसलिए तू दुआ पढ़ के आया है, अल्लाह हब्बिब ना इला अहलिहा, अल्लाह यहां वाले जित, अब यहां वाले सारे लोग हैं, पुलिस भी, आवाम भी है, उलमा भी, सब है, अल्लाह इन लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दे, आप चलते चले जाओ सब रिस्पेक्ट करेंगे आपका, आपने दुआ पढ़ ली है। वहां भी सारी अहलिया लेना, वहां के शियूख बड़े नेक लोगों के दिलों में हम उनकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, हो माशाल्लाह शेख सुदे जा रहा है, हम ये शेख सुहेल जा रहा हूं माशाल्लाह, हमारे दिल, हम उसके बारे में कोई गलत बात ना कहें, नहीं बात किसी वहां के लोगों के बारे में, ये दुआ सिखलाई अल्लाह के नबी। तो आप 23 इयर्स अल्लाह के नबी सारी दुआएं की है ना, बस इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ये हिजबुल आजम जो है इसको थोड़ी थोड़ी रोजाना पढ़ा करो, पढ़ा करो, इजाजत की जरूरत नहीं है, पढ़ा करो उसको, खोल के दुआएं हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, साहबा ने पढ़ी है, औलिया ने पढ़ी है, साहबा ने पढ़ी है, खास करके जो लोग हमसे बैत है, जो लोग हमसे बैत है उनको तो वैसे बैत होने वाले को तो वैसे ही इजाजत होता है, आपको तो पढ़नी है 40 रब्बना है, 40 इस्तिगफार है, इस 40 दुरूद है, इस तरीके से हिजबुल आजम है, अपने पांच सराने के पास रहे, आपने रूम जहां नमाज पढ़ते वहां रखनी चाहिए, 2-4-5-6 दुआ रोजाना पढ़ लिया करो, हो सकता है कोई भी दुआ कबूल हो जाए अल्लाह की। ये तो मेरे नबी के अल्फाज है, उन्होंने दुआएं की है। इसलिए हमारे असलाफ ने जब कभी कहीं चले गए, देखो दुआएं की है। देखो आदमी जब बीबी के पास जाता है सोहबत करने के लिए, तो बुखारी शरीफ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में है कि ये दुआ पढ़ ले तू, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क्तना। कितने लोग हैं, ये मर्द को पढ़नी है, किसको पढ़नी है, मर्द को पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान, अगर बीवी भी पढ़ ले तो ठीक, दोनों जमा होते हैं। फरमाया अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह शैतान से मेरी हिफाजत फरमा, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई आज की रात में तो बच्चा भी शैतानी ना बने। अगर आदमी ये दुआ नहीं पढ़ता है और बीवी के पास जाता है तो तीसरा शैतान भी उसके साथ इंटरकोर्स कर जिना करता है, कौन चाहता है, कोई चाहता है ऐसा? अगर ये दुआ पढ़ ली तो मेरे नबी का सही फरमान है बुखारी शरीफ में कि शैतान उसके करीब नहीं आएगा, बस मियां बीवी है। और अगर उस रात में प्रेग्नेंट हो गई और ये दुआ नहीं पढ़ी है तो बच्चा शैतानी पैदा होगा, ये अल्लाह के नबी का फरमान सुन लो। हाँ, फिर बच्चा मां बाप की कैसे सुनेगा? ये सारी मेरे नबी की जिंदगी उठाकर देखो, हर हर दुआ में अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए कितनी बेहतर से बेहतर बातें बयान फरमाई। देखो ना, तुम टॉयलेट में दाखिल हो तो क्या पढ़ो, बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा इन्नी औधु बिका मिनल खुबुसी। अगर आपने ये दुआ बाहर पढ़ ली और आप सुन्नत के मुताबिक लेफ्ट लेग को अंदर में दाखिल किया और चले गए, आपने जैसे ही शटर खोला शैतान वहां मौजूद है। अगर दुआ पढ़ लिए तो शैतान मर्द औरत सुन लो आपका शटर नहीं देख सकता। हदीस में है तिर्मिजी शरीफ में कि अल्लाह एक दीवार कायम कर देता है तुम्हारे और शैतान की आंखों के दरमियान में कि तुम्हारा सतर उसको नजर नहीं आता। लेकिन अगर दुआ पढ़े बगैर दाखिल हुआ तो शैतान तुम्हारी प्राइवेट पार्क के साथ खेलता है। देखो मेरे नबी की दुआ है, देखो छोटी छोटी दुआ है, बेस्ट दुआ है। कम से कम इतना तो पढ़ ले, इतना तो पढ़ ले। आदमी घर में दाखिल हो, दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाबी से दरवाजा खोला, हर आदमी दाखिल होता है मर्द हो या औरत। फरमाया उसी वक्त शैतान कहता है दूसरे शैतान को, आई एम ब्लॉक्ड इन दिस हाउस, मैं दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि इसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। अब मेरा खाना नहीं इस घर में, मेरा पानी नहीं, मेरा बिस्तर नहीं, शैतान आता ही नहीं है। हदीस में वो दूसरे शैतान को कहता है भाई मेरा तो बंद कर दिया इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर, और आप बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करो रात में तो पूरे घर की हिफाजत अल्लाह पूरी रात करता है। हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रांदेर वाले जिन्होंने फतावे रहीमिया लिखा है, उन्होंने कई मरतबा यह किस्सा बयान किया कि जिन वगैरह घर में आ सकते हैं लेकिन अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद किया तो फरमाया एक तो दाखिल नहीं हो सकता। एक मरतबा मैं लेटा हुआ था, हजरत फरमाते हैं मैंने देखे है, जाता था मैं हजरत के पास, बहुत बड़े आलिम थे रांदे में, कहा मैं लेटा हुआ था, देखा एक बच्चा सा छोटा बच्चा आया मेरे पास और उसने अलमारी यानी वो उस जमाने में कबर जो होता था उसमें खाना रखते थे, अलमारी बोलते हैं उसको, उसमें खाना रखा हुआ था, आजकल फ्रीज है, उस जमाने में तो ऐसा रखते थे, जिसको हम नेमत खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमत खाना, ये हमारा खाना जिसमें नेमत रखते हैं तो नेमत खाना बोलते हैं उसको। तो अब तो इस्तिला बदल गई है। हमारे गुस्ताद थे वो कहा करते, आदमी जब सफर करने के लिए तैयार होता है तो कहते हैं भाई वो क्या फरमाते हैं, टिकट बदस्त, यानी क्या कहते हैं, पारेकाप, ये लफ्ज इस्तेमाल, तो एक लफ्ज है फारसी का, अब उसको कैसे समझाऊं तुम्हें। खैर, मुफ्ती राजपुरी साहब ने फरमाया कि बच्चा जो है वो आया, उसने अलमारी नेमत खाना खोला, यानी वो दरवाजा खोला जहां खाना जिन था, वो बच्चा नहीं, वो बच्चे की शक्ल में क्या था, जिन था। वो चोरी करते हैं, जिन्ना चोरी करते, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा दरवाजा बंद किया है, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अलमारी भी और फ्रिज का दरवाजा बंद किया है, बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तन को ढांप लिया है, तो वो खोल नहीं सकता है। फरमाया उसने बड़ी कोशिश की, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया था खाना रखने के बाद, खोल ही नहीं सका, मैंने खुद देखा आंखें से। और याद रखो हदीस में आता है, चलो टाइम खत्म हो गया, साल भर में एक दिन ऐसा आता है कि उसमें आसमान से बला उतरती है, बला यानी मुसीबत। उस रात अगर आपका बर्तन ढांका हुआ नहीं है तो वो बलाए उसमें गिर जाती है खाने में। अब वो कौन सी रात है वो मालूम नहीं है, लिहाजा हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने को ढांक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। अगर उसमें बला उतर गई सारा घर मर जाएगा, बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके सामने क्या बात बयान की, बनना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को बनाना हो तो बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रात में सुबह में गया तो बच्चे सोए हैं, शाम में आया तो बच्चे सोए हुए हैं, तो बच्चे की कब तरबियत करेगा। आइंदा हफ्ते फिर बयान करेंगे इस पर इंशाल्लाह, बच्चे की तरबियत के ऊपर। मुझे ये कहना है कि बनना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आदमी के अंदर में शर है, खैर नहीं है, खैर के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। इसलिए ये सब मेहनतें हैं जिसमें हम दर्स में बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फुला और फुला, इन मेहनतों को करेंगे तो अल्लाह के यहाँ आदमी खैर वाला बन जाएगा, फिर उसकी मौत सालिहीन जैसी होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, या रहमान रहीम, या जल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ सलावात। اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے اللہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہیں اے اللہ تیرے نبی کی باتیں بڑی پیاری ہیں بہت اچھی ہے اللہ بہت اچھی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے اے اللہ ہم ساری دنیا کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ تیرے نبی کی زندگی یاد نہیں کرتے ہیں اے اللہ سیکھتے نہیں ہمیں تیرے نبی کی زندگی سکھانے والوں میں سے بنا دے تیرے نبی کی زندگی سکھانے والوں میں سے بنا دے اور سیکھنے والوں میں سے بنا دے اے اللہ ہمیں قبول کر لے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم بڑے مجرم ہیں بڑے مجرم ہیں دنیا میں سب کچھ کیا لیکن تیرے نبی کی زندگی کو چھوڑا ہے اس لیے ہم پریشان حال ہیں اگر کاش کہ ہم تیرے نبی کی زندگی کی ایک ایک بات کو پڑھتے سنتے سمجھتے تو آج ہم پر یہ پریشانیاں نہ آتی اے اللہ ہماری زندگی بنا دے اے اللہ ہمیں نیک صالحین میں سے بنا اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے بنا یا اللہ پوری امت کی حال پر رحم فرما فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ دشمنوں کو ختم فرما دشمنوں کو ختم فرما دشمنوں کو ختم فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ یہ ہمارے بھائی اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں دور دور سے آتی ہے تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے ہر ایک کا آنا قبول فرما ہر ایک کا آنا قبول فرما یہ سننے کی نیت سے آ رہی ہے اللہ سب کا آنا قبول فرما سب کی زندگی بدل دے سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما رحمت کے فیصلے فرما جو بیمار ہے شفا دے دے جو بیمار ہے شفا دے دے اے اللہ بڑی عمر کی عورتیں بھی آتی ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم